दोस्तों, आज की कहानी उत्तरापेक्षी, जिसे लिखा है मालती जोशी ने। तो कहानी शुरू करें। उत्तरापेक्षी। तुम क्या पहन रही हो? सब लोग कहीं जा रहे हैं क्या? भूल गई, शाम को मम्मी डैडी तुम्हें देखने आ रहे हैं। अमित, ये बताओ, ये देखने दिखाने का चक्कर क्यों? यह सब तो अरेंज मैरिज में होता है ना। अरे चक्कर कैसा भाई, सिंपल सी बात है, ये लोग अपनी होने वाली बहू को देखना चाहते हैं बस। और मैं चाहता हूँ तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन खूब अच्छा हो, इसलिए पूछ रहा था क्या पहन रही हो, तुम ही बताओ तो। ट्रेडिशनल सा कुछ पहन लेना, मतलब साड़ी वाड़ी। साड़ी? अमित, अब तक मैंने केवल दो बार ही साड़ी पहनी है, एक बार कॉलेज के फेयरवेल में, दूसरी बार दीदी की शादी में। तो अब तीसरी बार पहन लेना, आदत हो जाएगी, बाद में तो पहनते ही रहना है। फिर भी अमित, हम लोग इस मीटिंग को इतना फॉर्मल क्यों बना रहे हैं? मुझे तो यह सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं यार, मैं बस मम्मी के ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। कम से कम उन्हें तसल्ली तो रहेगी कि उन्होंने मेरे लिए लड़की पसंद की है, और अगर उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया तो। प्लीज रीमा, ऐसा मत बोलो, मैं मर जाऊंगा। फोन रखने के बाद भी रीमा कितनी देर सुन होकर बैठी रही। यूं तो वह कल से ही पेसो पेस में थी, जब अमित आकर कह गया था कि मम्मी डैडी उसे देखने आ रहे हैं। उसे यह सब कुछ सचमुच अजीब सा लग रहा था। अगर अमित कहता है कि वो लोग तुम्हारे माँ बाप से मिलने आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता। खैर, उसने तो माँ पापा को सही बताया था, और कल से ही मम्मी भाभी समदिन के स्वागत की तैयारी में जुट गई थी। उन्होंने तो शायद कुछ गिफ्ट वगैरह भी मंगा कर रख लिए थे। रीमा के ससुराल वाले पहली बार जो घर आ रहे हैं। साड़ी बांधने में उसे पूरा आधा घंटा लगा, पसीना पसीना हो गई, सारा मेकअप खुल गया था, फिर भी बात नहीं बन रही थी। खासकर आँचल ठीक से नहीं आ रहा था। दीदी की शादी में तो उसे साड़ी पार्लर वाली दीदी ने पहनाई थी। उसकी मोर पंखी साड़ी के एक कामदार आंचल को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मोर के पंख की तरह फैला दिया था। दर्जन भर पीने तो लगाई होंगी, पर तीन घंटे तक आंचल टस से मस नहीं हुआ। पहले तो उसने खुद कोशिश की, बाद में माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। माँ जरा ठीक से पिंक कर दो ना। माँ किचन में बिजी थी, हाथ धोकर उसकी मदद करते हुए बोली, आज साड़ी पहनने का भूत क्यों सवार हुआ? उसने लजाते हुए कहा, अमित ने कहा था जरा ट्रेडिशनल ड्रेसअप को हो लेना। माँ फिर कुछ नहीं बोली, जैसा बना उन्होंने पल्ला सवार दिया और अपने काम में लग गई। रीमा कमरे में जाकर फिर से मेकअप ठीक करने लगी। वह अपनी साज सज्जा को फिनिशिंग टच दे रही थी, तभी बंगले का गेट खड़का। उसके बाद देर तक घर में स्वागत सत्कार की गूंज होती रही। कुछ समय बाद माँ उसके पास आई, तू तैयार है ना? हाँ माँ, मैं तो तैयार हूँ, पर माँ चाय वाय तुम गोपाल के हाथ भिजवा देना, साड़ी के साथ मुझसे ना हो पाएगा। माँ कुछ नहीं बोली, थोड़ी देर तक यूं ही खड़ी रही। क्या हुआ? उसने संसंकित स्वर में पूछा। कुछ नहीं, माँ ने स्वर में तकली से कहा, तुमने तो ट्रेडिशनली तैयारी होने के लिए कहा है, और मैडम खुद कैसे आई हैं देखना जरा, स्लीवलेस ब्लाउज, नाभि दर्शना साड़ी, बॉयकट बाल, बाकी तुम खुद ही देख लेना, माँ को भी और बेटियों को भी। बेटियाँ भी आई हैं और क्या? एक ने लंबा सा चोगा पहना हुआ है जो एक तरफ से बिल्कुल खुला है, सारी टांगे नजर आ रही हैं, दूसरी की फ्राक घुटने के ऊपर है और एक कंधा बिल्कुल नंगा है। मैं तो समझती थी कि ऐसे कपड़े सिर्फ टीवी पर ही पहने जाते होंगे, आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। रीमा के अंदर जैसे कुछ उबलने लगा, बोली, माँ तुम अमित को मेरे पास भेजना जरा। अमित तो उन लोगों के साथ ही नहीं आया क्या? उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। इतनी देर तक मन में एक धुकधुकी सी उत्सुकता थी और एक हल्की सी खुशी भी थी, अब सबका स्थान केवल रोष ने ले लिया। तुम चलो माँ, मैं आती हूँ, कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। खुले बालों की कसकर एक चोटी बना ली, इतनी मेहनत से सवारे हुए स्टाइलिश आंचल की सारी पीने निकाल दी और माँ की तरह दोनों कंधों पर आंचल लपेट लिया। फिर वह धीरे धीरे चल कर ड्राइंग रूम में आई। अमित ने मम्मी डैडी को उसने नतमस्तक हो प्रणाम किया, फिर सिर झुकाकर पापा के पास एक स्टूल पर आकर बैठ गई। उसे देखकर सभी लोग चकित थे, उसके माँ पापा भी। बड़ी देर बाद अमित के डैडी के बोल फूटे, अरे वाह, रीमा साड़ी पहन लेती है, हमारी रूही जूही ने तो शायद ही कभी पहनी हो। आजकल कौन सी लड़कियां साड़ी पहनती हैं, माँ ने कहा। इसका आज पता नहीं कैसे मूड बन गया। शायद आपके आने में, पापा ने कहा, और दोनों पुरुष ठठाकर हंस दिए। अमित की मम्मी तनिक सा मुस्कुरा कर रह गई और दोनों बहनों ने नाक को सिकोड़ कर मुंह बिचका लिया। इसके बाद चाय आई। माँ ने लंबा चौड़ा सर जाम किया था, बेचारी खुद ही सर्व कर रही थी। पापा ने थोड़ा हाथ बटाया पर वह अपनी जगह से हिली भी नहीं, गुंगी गुड़िया की तरह बैठी रही। जो भी कुछ पूछा गया उसका उत्तर दे दिया। प्रश्न भी कुछ खास नहीं थे, केवल औपचारिकता पर थे। घंटे भर बैठ कर वे लोग चले गए। माँ बाप की प्रतिक्रिया जानने का ना तो उसमें साहस था न धीरज। उन लोगों के जाते ही वह भी अपने कमरे में गुम हो गए। दूसरे दिन वह काम पर नहीं गई, मन ही नहीं हुआ। उसका फोन दिन भर बजता रहा पर उसने उठाया नहीं। जानती थी कि फोन अमित का है, उससे बात करने की उसकी जरा भी इच्छा नहीं थी। शाम को वह खुद दनदनाता हुआ उसके घर पहुंच गया और कमरे में पांव देते ही तखलंदाज में बोला, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो, जानती हो मैं दिन भर कितना परेशान रहा हूँ। रीमा ने उसकी ओर ऐसा रोषपूर्ण कटाक्ष फेंका कि उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया। उसका लहजा भी एकदम नरम हो गया, बोला, सॉरी यार, मैं बहुत टेंशन में आ गया था। एक तो तुम ऑफिस भी नहीं आई, फिर फोन भी नहीं ले रही हो, डर गया था, कहीं बीमार तो नहीं हो। बीमार हो भी जाती तो आश्चर्य नहीं, तुमने उसका पूरा इंतजाम कर दिया था। इतनी मेरी फिक्र थी तो कल मुँह छिपा कर क्यों बैठ गए, मैदान में उतरना था ना। कल मैं जानबूझकर नहीं आया, मैं उन लोगों को फ्री हैंड देना चाहता था। फ्री हैंड, वो किस लिए? वैसे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे ना आने का कारण मैं जानती हूँ। तुम आते तो माँ पापा तुमसे अपनेपन से बतियाते, गोपाल भी शायद कुछ बेतकल्लुफ हो जाता, तब यह बात छिपी नहीं रहती कि तुम इस घर के लिए नए नहीं हो, तुम्हारी आमद रफत यहाँ होती रहती है। बेकार की बातें मत किया करो, हमारी दोस्ती के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, तुम्हारा सारा वर्णन भी कर चुका हूँ, करता ही रहता हूँ, पर कल तुमने ऐसा पुअर शो किया कि बस। पुअर शो मतलब? मम्मी इतना अपसेट हो रही थी, बोली, तुम तो कहते थे कि रीमा इतनी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ऑलराउंडर है, टॉपर है, मुझे तो एकदम बुद्धू और बोडम लगी, ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में जुबान ही नहीं है। मैं ट्रेडिशनल बहू का किरदार निभा रही थी, बहुएं अपने सास ससुर से, खासकर होने वाले सास ससुर से चटर पटर करें तो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सुना, कपड़े भी बहुत ऊट पटांग पहन रखे थे। ऊट पटांग क्यों, साड़ी पहनी थी, तुम्हारा ही सजेशन था। साड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, 2500 की संबलपुरी पहनी थी। अब तुम मुझे यह बताओ कि जब तुम्हारे घर वाले, खासकर महिलाएं, इतनी आधुनिक विचारधारा की हैं, तो तुमने मुझे ट्रेडिशनली ड्रेस पहनने के लिए क्यों कहा? बेवकूफ था मैं, उसने झल्ला कर कहा, मुझे क्या मालूम था कि मेरे सजेशन को तुम उल्टा ले लोगी और एकदम एक्सट्रीम पर ही चली जाओगी। तो आदरणीय अमित कुमार जी, आपको यहाँ आकर मुझे इन सजेशन का सही अर्थ समझाना था ना, मुझे मेरी सीमाएं तो बता दी, आप साथ होते तो सही मार्गदर्शन भी होता, मेरा मनोबल भी बढ़ता, पर आप तो मुँह छिपा कर बैठ गए और मुझे उन लोगों के बीच अकेला छोड़ दिया। खैर, आपकी कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी, पर मेरी हम उम्र आपकी दोनों बहनें भी तो वहाँ थी, उन्होंने भी कोई पहल नहीं की, यूँ कहिए कि मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं दी, इतनी देर बैठी रही पर मुझसे एक बात तक नहीं की। उन लोगों ने तो तुम्हें पहली नज़र में ही रिजेक्ट कर दिया था। क्या? रीमा का मुँह खुला का खुला रह गया। हाँ, वे लोग कह रहे थे कि इस लड़की को भाभी के रूप में इंट्रोड्यूस कराते हुए हमें बेहद शर्म आएगी। तुम्हारे घर में उनकी राय की इतनी अहमियत है? नहीं, उसकी मुझे परवाह नहीं, पर वे दोनों मिलकर मम्मी का ब्रेन वॉश करने में जुटी हुई हैं, इसलिए डर लगता है। रीमा, एक काम करते हैं। क्या? कल परसों तुम मेरे साथ घर चले चलो। उससे क्या होगा, वे लोग तुम्हें नॉर्मल गेटअप में देख लेंगे तो उनका नज़रिया बदल जाएगा। अम्मी, एक किस्सा याद आ रहा है, सुनोगे? दीदी की शादी में पहले की बात है, सबसे पहले तो उनके सास ससुर आकर उन्हें देख गए। जब उन्होंने ओके कर दिया तो जीजा जी अपने एक दोस्त के साथ दीदी को देखने आए। जब उन्होंने भी पास कर दिया तो जैसे लाइन ही लग गई। कभी भैया भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, रोज ही कोई ना कोई आता रहता। एक बार तो उन लोगों ने हद कर दी। बुढ़ी नानी माँ से मिलाने दीदी को ठेठ रतलाम ले गए। यह सब मुझे क्यों सुना रही हो? उन दिनों हम लोगों की दोस्ती नई नई परवान चढ़ रही थी, इसलिए मैं बहुत खुश हो रही थी कि कम से कम मुझे इस अपमानजनक स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा। पर लगता है मेरे भाग में भी वही सब कुछ लिखा है। आज ट्रेडिशनल पोशाक, कल नॉर्मल ड्रेस, परसों मॉडर्न आउटफिट, आज मेरे घर में, कल तुम्हारे घर में, परसों शायद किसी होटल या कैफे में। आइडिया, अमित ने ताली बजाकर कहा, कल किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैं रूही जोही को ले आऊँगा, तुम चाहो तो अपने किसी फ्रेंड को ले आना। सॉरी अमित, जो लोग कपड़ों से या सकल सूरत से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं उनके लिए मैं बार बार सो पीस नहीं बन सकती। रीमा प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे मालूम है। तुमने अपनी मम्मी से वादा किया है कि अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। अमित फटी फटी आँखों से उसे देखता रह गया। और शायद इसलिए तुम रूही जोही को मक्खन लगा रहे हो ताकि वे मम्मी से मेरी सिफारिश कर दें। तुम्हें सब यह किसने बताया? तुम जिस मुस्तैदी से अपनी मम्मी का ईगो सहलाने में जुटे हो, तुम्हारी वह पुरजोर कोशिश की सारी कहानी कह जाती है। पर यह मत भूलो अमित कि मेरा भी आपके सम्मान है। तुम इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरे लिए भी मेरे माता पिता आदरणीय हैं, तुम उनका मजाक नहीं बना सकते। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। कल तुम आते तो देखते कि वे दोनों तुम्हारे परिवार के सामने कैसे पीछे जा रहे थे। वे तो यही मानकर चल रहे थे ना कि रीमा के ससुराल वाले हैं, उनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। उन बेचारों को क्या मालूम कि अभी तक इस रिश्ते पर हाई कमान की स्वीकृति की मोहर नहीं लगी है। सच, उन लोगों का उत्साह, उनकी तत्परता, सब कुछ कितना दयनीय लग रहा था मुझे। अमित मुँह लटका कर बैठ गया। अमित, तुमने अपनी माँ से एक कमिटमेंट की है, तुम्हारी एक कमिटमेंट मुझसे भी है, दोनों में से किसी ज़्यादा तरीज होगी। मैं तो दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि जरा भी कोऑपरेट नहीं करना चाहती। क्या कोऑपरेशन चाहते हो, बोलो। मैं कह रहा था एक दिन मेरे साथ घर चलती, तुम्हारी बहनजी टाइप इमेज भी टूट जाती और उन लोगों की गलतफहमी भी दूर हो जाती, तो एक दिन उन्हें मेरे केबिन में ले आओ ना, मेरे व्यक्तित्व मेरे कृत्य दोनों एक साथ देख लेंगे। मतलब घर नहीं चलोगी? क्यों नहीं चलूंगी, पर एक बार विश्वास तो दिलाओ कि वह घर मेरा है, फिर जब कहोगे जहाँ कहोगे चली चलूंगी। जिससे मिलवाना चाहोगी मिल लूंगी, अपनी शक्ति भर उन लोगों को रिझाने की कोशिश भी करूंगी। और कैसा कोऑपरेशन चाहते हो, बोलो। अमित फिर चुप हो गया। ये मेरी अस्मिता की लड़ाई है अमित, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अपने घर वालों को समझाना होगा कि मैं कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं हूँ, पर उनसे पहले तुम्हें इस सच को स्वीकार करना होगा। अमित कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर उठकर बाहर निकल गया। रीमा गुमसुम से उसे जाते देखती रही। उसने तय कर लिया था कि अगर आजकल में वह लौट कर आया तो वह समझ लेगी कि उन दोनों में प्यार जैसा कुछ है। अगर वह नहीं आता तो उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि वह जानती है कि रीढ़ विहीन पुरुष के साथ वह जिंदगी नहीं बिता सकती। तो दोस्त, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।